मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्म देखिए विगत तीन दिनों से अपन चरणानुयोग के आधार से वीतरागता की पुष्टि कैसे होती है
इस प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे यह सूचना मिली कि भारत के बाहर से 30 लोग जो हैं वो फोन से कनेक्ट होते हैं और इसका लाभ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनकी ये भावना है कि दिन भर के स्वाध्याय में जो भी सारांश है उसे संक्षेप में व्यक्त किया जाए, अच्छा है, अपना भी रिपीटेशन हो जाएगा। तो आज अपन ने सुबह वितरण विज्ञान पाठमाला भाग 3 के आधार से जो ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत हैं उसके आधार पर चर्चा की है। उसमें एक मेन बात ये आई थी उसके पहले ही कि प्रारंभिक भूमिका में ही सबसे वसल का त्याग और अष्ट मूल मंत्र धारण ये प्रारंभिक भूमिका के रूप में चरणानुयोग में कहे जाते हैं। यदि ये नहीं हो, यानी सबसे वचन का त्याग नहीं हो, तो सम्यक दर्शन तो 16 सम्यक दर्शन की पात्रता भी नहीं होती। और यदि ये हो जाए तो जीव को आगे बढ़ने का चांस है, गारंटी नहीं। एक बात तो ये मानवीय बात आ जाए। दूसरी जो निमित्त निमित्त संबंध है परिणाम और क्रिया के, उसी के फलस्वरूप चरणानुयोग का जन्म होता है। चरणानुयोग माने बाह्य क्रिया की प्रधानता से धर्म का वर्णन करना या जीवों को धर्म में लगाना, ये चरणानुयोग का मुख्य केंद्र बिंदु है। और इसके क्यों होता है, अनुव्रत क्यों होते हैं, महाव्रत क्यों होते, उसका जवाब ये निमित्त निमित्त संबंध देता है। जैसा कि वितरण विज्ञान पाठमाला के 3 भाग में प्रारंभ में ही अपन ने पढ़ा था कि ज्ञानी श्रावक को जिसको आत्मानुभव होता है, वेद विज्ञान होता है, वो ज्ञानी होता है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। और उसको जब अनंतानंदी के साथ साथ अप्रत्याख्यानावरण का भी उदय का अभाव हो जाए, यानी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाए, तो जो वितरागता का अंश है वो देश चारित्र कहलाता है। निश्चय से वही व्रत है, वही संयम है, वही चारित्र है, वही धर्म है, निश्चय में सब वही है। अभी पूर्ण वितरागी नहीं हुआ और 2 कषाय चौकड़ी के उदय वाला रागांश बाकी है, तो जो हमारी बाह्य क्रियाएं होती हैं वो हमारे राग से प्रभावित होती है। यूं कहेंगे राग निमित्त है और बाह्य क्रियाएं नैमित्तिक हैं। और ये नियम अकेले ज्ञानी के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए, सब के लिए है। ज्ञानी अज्ञानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देव नास्तिक अंदर में जैसे परिणाम होंगे उन परिणामों के अनुसार यदि उसकी गति इत्यादि का उदय रहता है, सामर्थ्य है, शक्ति है, तो बाह्य चेष्टाएं रहती होती है। अब देखिए क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, वाणी कठोर हो जाती है, मुद्रा कठोर हो जाती है। लोग अब तो फिर 3D से समझ लेते हैं कि आदमी गुस्से में है, परेशान है, यानी बड़ा आम है, बहुत अहंकार झलकता है। ये तो हमारी फेस ट्रेनिंग से, बॉडी लैंग्वेज से लोग समझ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे अंदर परिणाम है वैसे ही हमारी बाह्य चेष्टाएं हो जाती है। भले हम उसे करता नहीं है लेकिन उसकी योग्यता वैसी है, परिणाम की योग्यता वैसी है। तो इस तरह हमें जो बारह क्रियाओं में ज्ञानी को कषायों में कमी हो गई, मंदता हो गई, तो ऑटोमेटिक उसकी लाइफ स्टाइल भी चेंज होती। लाइफ स्टाइल की जो चेंज होती है उसी का नाम शास्त्रीय भाषा में अनुव्रत है। और यदि किसी के तीन कषाय का अभाव हो गया हो तो महाव्रत है, वो भी मुनिराज की वास्तव में जीवन शैली है। तो एक बात तो इसका खुलासा आज विस्तार से अपन ने समझा। दूसरी एक मानवीय बात ये आई कि जो जीवन में परिणाम होता है वो परिणाम से क्रिया की तरफ हो रहा है। परिणाम अंदर होता है, उसके अंदर से बाहर की क्रिया होती है। लेकिन जब कथन होता है, प्रतिपादन होता है, तो स्थिति बदल जाती है। समझने समझाने में क्रिया से परिणाम की चर्चा होती है, यानी क्रिया से परिणाम का अनुमान लगाया जाता है। तो संक्षेप में अपन को एक समझना चाहिए, आज अपन मान अनुग्रहों के बारे में संक्षेप में चर्चा की थी, और ये अनुग्रह यानी विषयों में रति उसकी कम हो गई अंदर में परिणामों में। और गहराई में सोचे तो ये क्यों कम हुई, इसलिए कम हुई कि उसको अपने चैतन्य स्वभाव का विशेष आनंद प्रकट हो गया। सम्यक दृष्टि की अपेक्षा पांचवें मूल स्थान वाले को आत्मा का अत्यंत आनंद विशेष रूप से प्रकट हो गया, इसलिए उसके विषयों में रति कम हो गई तो विरति हो गई, विरति हो गई तो उसके जीवन में अनुव्रत आ गए। तो ये अनुव्रत है अंदर की कषाय की मंदता और चैतन्य के विशेष आनंद को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह चलना योग हमें निरंतरता का संदेश देता है, मैसेज देता है। ये आज की चर्चा का सार है। अब मैं दो चार क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। परिणति शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, ज्ञानी की परिणति से क्या अर्थ लेना चाहिए, परिणति किस गुण की पर्याय है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जब उसने ध्यान से सुना होगा सोचने की कोशिश की है। देखिए जो प्रचलित अर्थ है वो ज्ञानी धर्मात्मा के अर्थन की जो विद्राता की धारा कहती है उसके लिए शुद्ध परिणति शब्द का प्रयोग होता है। वैसे आप परिणति को समझने के लिए परिणति और उपयोग दो चीजें सामने खड़ी करें। जैसे मान लीजिए किसी को पैसे का बहुत प्रेम है या सिनेमा का बहुत शौक है, लेकिन वो मंदिर में दर्शन भी तो करता है, तो उपयोग तो मंदिर में दर्शन करने में और प्रवचन सुनने में लग रहा है, तो क्या उस समय उसका जो सिनेमा देखने का शौक है वो खत्म हो गया, वो परिणति है। यानी जो कषायों की चारित्र गुण की जो कषायों की धारा है, चाहे वो कषायों की कमी होने की धारा हो, कषायों की अभाव की बात हो या सद्भाव की बात हो, जो कंटिन्यूस धारा चलती है उसको परिणति कहते हैं। और एक शायद भागवत जी का ही भजन है, वो बहुत क्लियर करता है इस बात को। परिणति सब जीवन की तीन भाग हरणी, एक पाप एक पुण्य एक लाभ हरणी। इन्हें पाप रूप उपयोग न हो, जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कोई हमने हिंसा झूठ चोरी खुशी का त्याग कर दिया है ऐसा नहीं, लेकिन उस समय वो उपयोग में नहीं, फिर भी हमारी परिणति में उसकी धारा कंटिन्यू चल रही है। तो उसको लब्धि को जो है वो वास्तव में ज्ञान की क्षमता को लागू पड़ता है, इसके लिए मूल शब्द जो है वो परिणति ज्यादा उपयुक्त है। किस गुण की पर्याय है ऐसा प्रश्न था, तो मुख्यतया ये चारित्र गुण की पर्याय। नीचे बनाए गए शब्द या तो बल या तो खेल के अनुसंधान वाले हैं, स्वभाव नीचे को दृष्टि स्वभाव दृष्टि अभिप्राय परिणाम भाव उपयोग रुचि, इन शब्द के पीछे या तो बल या तो खेल शब्द लगाकर मर्म क्या है स्पष्टीकरण करें। मुझे ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, क्या पहचान पूछना चाहते हैं। देखिए वीर शक्ति है आत्मा में और वीर शक्ति के प्रजनन से जो भी पर्याय होती है तो उसको पावर मिलता है। पावर से ही काम आपका बल्ब है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, सब है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं है तो काम नहीं करेगा। तो श्रद्धा में श्रद्धा का बल, ज्ञान में ज्ञान का बल, चारित्र में चारित्र का बल, वो एक एक गुण का रूप सब गुणों में होता है ना, तो वो वीर का जो है असर है उसकी झलक वो सब में होती है। तो ये खेल क्यों लगाया गया, खेल का क्या मतलब? खेल तो जो है वो आनंद पूर्वक क्रीड़ा, सदगुरु कहें भव्य जीव वर्षों तोरो तुरंत मोर की जेल, समकित रूप लखो अपनो और करो शुद्ध अनुभव को खेल। खेल सब का प्रयोग है, तो खेल का मतलब है स्वभाव में केली करे, केली करे से मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के अभिनंदन। ये शब्द पर्याय में जो आनंद प्रकट होता है उसके लिए वास्तव में खेल शब्द का प्रयोग होता है, अन्यथा बाकी सब बल का यूज कर सकते। गुरुदेव कहते हैं कि परिणाम से बंध और परिणाम से मोक्ष, भाव से बंध और भाव से मोक्ष, इनमें कुछ अंतर है कि एक ही बात है। इसीलिए आपको परिणाम और भाव का अंतर समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ देवलाली में स्वाध्याय में ये बात बहुत आती है, मैंने नए रहस्य पुस्तक में भी इसको क्लियर करने की कोशिश की है। पर्याय या परिणाम शब्द जो है वो कालवासी है, त्रिकाली जो अखंड वस्तु है उसके समयवर्ती सूक्ष्म अंश को परिणाम कहते हैं, प्रवाह क्रम के सूक्ष्म अंश को परिणाम कहते हैं। और जीव के परिणाम यानी समयवर्ती अंश में चार प्रकार जो होते हैं, उदय उत्सम चरित क्षय उत्सम के निमित्त से उदय औसमिक भाव, ये भाव कहलाते हैं। अपन जो प्रयोग करते हैं वो चारों भावों को और कालवर्ती अंश को मिला के करते हैं। जैसे समय दर्शन पर्याय है तो कालवर्ती अंश में वो समय रूप भाव प्रकट होता है। वास्तव में ये सब भाव है, तो भाव से बंध होता है, भाव से मोक्ष होता है, ऐसा कहो तो अकेले भावों की बात हो रही। और परिणाम शब्द बोले तो परिणाम तो व्यक्ति नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई भाव तो होता ही होता है। प्रत्येक गुण के परिणाम में जैसा उस गुण का नेचर है वैसा भाव होता है। विशेष साल का यहाँ स्वाध्याय चला था उसमें काफी डिटेल से ये बात आई थी। वैसे तो चार महायोगों में से भेद ज्ञान और वितरकता होती है, फिर भी सबसे ज्यादा भेद ज्ञान का अवकाश के संयोग में है। बहुत सुंदर प्रश्न है, सीधी चर्चा भेद ज्ञान की आत्मानुभूति की द्रव्यायोग में आती है। द्रव्यायोग के भी दो ब्रांच है, एक न्याय और दूसरा अध्यात्म, ध्यान में है ना। तो अध्यात्म में ही चर्चा आती है भेद ज्ञान की, जिसमें समझ लो भेद ज्ञान और आत्मानुभूति का टॉपिक हो गए, विषय वस्तु हो गए, उसको ही अध्यात्म बोलते। और अध्यात्म में भी आप सूक्ष्मता से दो दृष्टि ले सकते, एक तो सीधी दृष्टि का विषय जो देती हो गए, तू है कौन, समय जी का दृष्टि प्रकाश है, ध्यान में आए। और दूसरे प्रेरणा की बात बहुत ज्यादा, अपना हित कर ले, मनुष्य बहुत जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बार भावना का चिंतन है, यानी उपदेश शैली और उपदेश बोध और सिद्धांत बोध। तो हमें वास्तव में दृष्टि प्रधान ग्रंथों का स्वाध्याय करके अपनी सोचने की आदत, अपना नजरिया, अपना व्यू वो दृष्टि की प्रधानता वाला बनाना चाहिए, तो हमारे सम्यक की पात्रता विकसित होगी। ये बात मैं बहुत हृदय की गहराई से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम स्वाध्याय भी करते हैं तो इसको छोड़ के बाकी चीजों में बहुत उलझ जाते हैं। इसके लिए चोदन मन जी ने सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप वाला जो प्रकरण लिखा है सातवें अधिकार में, उसमें लिखा है न्याय व्याकरण में उलझ जाएगा, भूगोल इत्यादि में उलझ जाएगा, कर्म प्रकृतियों में उलझ जाएगा, यानी उसका जानने का अभ्यास करने का निषेध नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान बस ऐसा लगता है हमें सब कुछ हो गया, जबकि ये दृष्टि के विषय का ज्ञान हो गए तो सब कुछ है और ये नहीं हो गए तो कुछ नहीं।
बराबर, बराबर, कुछ।
दूसरा आया चारों योग का क्रम बताइए। कहने में जरूर क्रम पड़ता है सूक्ष्मता और स्थूलता की अपेक्षा से, परंतु स्वाध्याय में अपनी बुद्धि और योग्यता के अनुसार आप जितने देव ज्ञान की प्रेरणा मिले, जीतराग्ता की प्रेरणा मिले, उस सभी ऊपर स्वाध्याय करें। पहले इसका करना या पहले इसका करना, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर की। जे जे साधक तेजे बाधक, इससे दूर होना जाना है, होता जाता है ज्ञायक। मेरी तो पंक्ति नहीं एक दूसरी वाली। देखिए प्रारंभ की भूमिका में बाह्य क्रियाओं और स्वभावों को साधक कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो साधक नहीं है, वो बाधक है, क्योंकि जीव उसमें अटका तो अपने चैतन्य से दूर हुआ। टोडरमल जी ने तो ये बात बनाती ला दी है, तो अमृतचंद्र आचार्य का सहारा लेके नयों के लिए भी कही है कि जे जे वस्तु साधक है ते ही कहां बाधक है, बाकी राग द्वेष की दशा की कौन बात है। पुण्य पाप की तो बात छोड़ो, शुद्ध नहीं का विकल्प भी प्रारंभिक भूमिका में अपने स्वरूप का निर्णय करने में साधक भले कहा जाए, परंतु अनुभूति में बाधक है। इसलिए अनुभूति में अनुभूति के अलावा सब बाधक है, अनुभूति का विकल्प भी बाधक है। आज सुबह पूजन में ये पंक्तियां आई, जब तक इन पांचों प्रत्यय का भाव है तब तक परम महत्व का उनमें भाव है। ये जो आश्रम है ना पांच प्रकार के, विद्या समाज कसाई हो उनकी चर्चा है। शास्त्रों में अमृत अवलिक विष नाम उल्लेख आए थे, पहले विष जय तो बाजार में घना प्रकार ना मिले थे, अमृत के दुकान अमृत के वो पदार्थ से हमें क्या मिले, अमृत जेमा जन्म नथी अने मरण नथी, एवो भगवान आत्मा से अमृत स्वरूप छे, अने ते भगवान आत्मा नो अनुभव ते ज खरेखर अमृत छे। ए सिवाय बाकी बधु जय छे, मारो चैन पूर्ण थई गयो अने मारा पोषण थई गयो। देखो रे
शेयर मार्केट होना आया भाई साहब, वो तो ले लो। शेयर मार्केट होना आया एक ले लो।
मैंने
हाँ शेयर मार्केट आप
आपका नाम लिखा है।
नहीं नहीं इसलिए आप ले लो, आपने बोला
शेयर बाजार में चर्चा करके कमाया हुआ पैसा युवा में गिना जाएगा, स्पष्टीकरण करें। वही पैसे से कोई मंदिर बनाता है या कोई दान देता है और कंडीशन मंदिर के हॉल में बैठा कर पूजा देता है तो पुण्य में गिना जाएगा या पाप में गिना जाएगा। देखिए कथन तो बहुत स्थूलता से होता है, घर में है पाप का पैसा, कथन बहुत स्थूलता से होता है, लेकिन परिणामों में पाप और पुण्य में जो परिवर्तन है करुणा योग के नियम के अनुसार वो होता रहता है। ऐसा कहते हुए कोई इसका समर्थन करता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने एक बात कही थी उस पर मैंने उत्तर भी उसी समय दे दिया
था,
है?
दिया था।
कि जिस दिन आपके नींद हैरान हो जाए वो आपके आत्म हित में महाबाधक तत्व है। जैसे व्यापार भी एक तरह से रिस्क है, जैसे शेयर मार्केट में रिस्क है ऐसे व्यापार में भी रिस्क है। क्या क्या है ना, रिस्क के बिना आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, लेकिन वो कंडीशन ऐसी है कि अगर वो जीव के क्षमता के भीतर का काम करे, ज्यादा ओवर खर्चे नहीं ले रहे तो शांति से जीवन चलता है, व्यापार भी चलता है, घाटा मुनाफा भी होता है, नुकसान को बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए और लाभ को भी सहने की क्षमता होनी चाहिए, पागल हो जाए ज्यादा लाभ हो जाए। तो ये सब बातें हैं और बाकी के जो है वो बहुत सामाजिक विषय है डिस्कस करने के, ये तो थोड़ा उसका पेट जलता है, कंडीशन मंदिर के हॉल में बैठा कर पूजा देता है, तो आप गर्मी में बैठा करो कोई चिंता की बात नहीं,
आपको पाप नहीं लगे वैसा कर लो।
हाँ देखिए पार्ला का पंच कल्याण कुआ में बहुत खुल के बात करता हूँ, इसमें व्हाट्सएप पे बहुत चला है मेरे साथ, तो मैं उससे मिलना भी चाहता था, भोपाल गया था लेकिन वो व्यक्ति मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं उनसे कहता कि आप सरकारी परिस्थितियों को समझते मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, सबको शरण की महिला एयर कंडीशन होता है। ये है कि जैसी हिंसा जाती हमारे एयर कंडीशन में होती है, समुद्रण में नहीं होती, वो दैनिक की व्यवस्था है। उनने भी व्यवस्था तो बनाई ना, नहीं तो लाखों लोग बैठे हैं तो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कैसे दम नहीं घुटेगा, तो वो अनिवार्य है। तो वो परिस्थिति ऐसी थी, वो स्थान समझ लीजिए उसी समय उपलब्ध था, उसके आगे पीछे वो स्थान नहीं उपलब्ध नहीं था, और उस स्थान के अलावा दूसरी जगह हो ही सकता था। तो मैं उन सबके हृदय को जानता हूँ, काफी मजबूरी में उन्हें वो व्यवस्थाएं बनानी पड़ी, अन्यथा समझ लीजिए इतनी भावना या इतना जो भी उसने मेहनत की, वो हरेक की भावना होती है कि हमने इतनी मेहनत से मंदिर बनाया, इतनी भावना से बनाया, तो अपने कम से कम मुक्षु भाई आ गए देख हैं, तो पुण्य पाप तो परिणामों से होता है ना भाई साहब, ख्याल में आया है ना। ठीक है, अधिनियम का दोष लगा है, हमको भी लगा क्योंकि हम उसमें बैठे, जिनको त्याग का उन्हें नहीं जाना चाहिए था, जो अपने को ऊंचा अनुष्ठान वाला मानते उन्हें नहीं जाना चाहिए था, तो असंयम का दोष उन्हें भी लगा, हमें भी लगा, चर्चाएं कर्मों में सबको लगी, वो परिणति की बात है। ये उपयोग में जो जो समझो महोत्सव जैनेन्द्र भक्ति ज्ञान वैराग्य की धारा, तो वो सभी लाभ मिला मेरे ख्याल से। अब मेरी ड्यूटी खत्म हो गया। अरे वास्तु शास्त्र को जैन धर्म के अनुसार मानना चाहिए कि नहीं, वास्तु ठीक करने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो सारे उपाय सहयोग होते हैं पुण्य पाप के उदय के अनुसार, इसका कोई भी वास्तु शास्त्र से किसी प्रकार का कोई नियम वास्तव में है नहीं। एक जैसा कि मैंने निर्मित संबंध की बात कही, एक साइंटिफिक जो वो जरूर है, जैसे कि मंदिर पूरा मुखी होना चाहिए, मकान पूरा मुखी होना चाहिए, तो सुबह की जो नरम नरम धूप है एंटीबायोटिक को लेकर के वो आपके घर में प्रवेश करे, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। तो ऐसे निर्मित संबंध जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं वो बात अलग है, लेकिन आप समझ लो जो ज्यादा जो अंधविश्वास वाला मामला है वो तो गरीब के ख्याल से ही है।
समराइज भट स्पोकन
सुनाए ना, दो पांच मिनट
ओम। आज जो मैंने वक्तव्य दिया, हमने दृष्टांत प्रस्तुत किया संसार मनुष्य जो झाड़ से लटक रहा व्यक्ति को, तो उसका विवेचन ये है हम ही हैं भूखा कोई नहीं। यदि हम कोई एक मधु बिंदु के स्वाद में फंसे तो ये मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा, जो तत्व उपलब्धि होना चाहिए वो नहीं हो पाएगी। दिन रात रूपी चूहे आयु को काट रहे हैं और उधर चार गलियां मन पाए खड़ी हैं, समझाने वाला गुरु समझा रहा तो अपन सुनते हैं समझते हैं विचार करते हैं, तो कर विचार तो पाओ। हम आप सब विचारशील प्राणी हैं और इसीलिए यहाँ पर ये सब गोष्ठियां आ रही है दफन करते हैं कि जो कुछ जीवन के क्षण बचे हैं उनका भरपूर सदुपयोग आत्मित के लिए करें, अधिक से अधिक प्रयोजन तत्वार्थों का श्रद्धा कौन ही गिर पाते हमारे लिए, अब क्या करता हूँ क्या करता हूँ। अगर बुद्धि है और समय है तो आप खूब पढ़िए ग्रंथों, नहीं तो मैंने कल कहा था सूत्रों का पार नहीं है, काल थोड़ा है और बुद्धि भी अल्प है,
इसलिए अपने को वो काम पहले सीख लेना कर लेना चाहिए जैसे कि जन्म मरण का अंतर है, और ऐसा अंतर से अहोभाव उत्पन्न होने लगे अब मुझे इन बातों की खबर ही नहीं है। अंदर से उतरते हुए परिणाम आना चाहिए। पांच इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि ये बहुत ही खतरनाक है, ये मिथ्या से एक प्रकार है, क्योंकि जब तक सुखावास में सुख अभिप्राय में बैठा है, और मैंने दूसरा दृष्टांत समय से दिया उसमें जैसलाचार्य की गाथा है अतिरिक्त गाथा 15 नंबर की, जिसमें आचार्य ने कहा सोना बनाने की विधि के मूल गाथा में, और जैसलाचार्य की गाथा कहीं पूर्वाचार्य की है क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर टीका लिखी है, और वो क्या क्या है सीता नागफणी की जड़ रास्ते क्या सिंदूर और हस्तली का मुख, और इनको से वो तपाने पर स्वर्ण पैदा होता है तो खुश हो जाए। टीका का राजा त्रिकोण का उदय हो तो होता है और नहीं हो तो नहीं होता है। और इसके बारे में समय हो गया था, कहना इतना ही था कि आपको पता है भरते रहे और सुरचंद्राचार्य का किस्सा, दोनों एक प्रकार से धनाढ्य राजपुत्र ही थे, दोनों बैरागृह के चले गए अलग अलग, और भरतयादि वो तापसियों के चक्कर में फंस गए, और 12 साल तक रसायन विद्या सिद्ध की जिससे सोना बनता था, और तुंगड़ी होती ना उसमें उसको रखा भर की कि कोई मेटल से उसका रिएक्शन न हो, और उन्होंने देखा कि जरा हम अपने भाई का पता लगाए तो मुनि राज थे सुरचंद्रा के, अब वो तो मुनि की दशा क्या होती है, धूल दूसरे करीब दुबला पतला, तो उन्होंने अपने शिक्षकों को भेजा और समाचार भी दिया, अरे वो तो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, यानी खाने पीने की भी लाले कुछ नहीं, कपड़ा भी नहीं है, और ऐसी ऐसी दशा में पड़े हैं, तो उन्होंने भेजा कि जाओ उनको स्वर्ण बनाने की रसायन विद्या दे दो और ये अपना जो दारिद्र है वो मेट ले, और वो सब किसान गए आपको बताइए विद्या थी, और उन्होंने क्या किया कि भैया तुमको भी मुबारक हमको कुछ नहीं की, आगे फिर वो खुद भरते रह जाता है समझाता है, तो कहा इसीलिए घर में कमी थी क्या सोना चाहेंगे, इसके लिए तुमने 12 वर्ष से तुमने लगाया कितना चाहिए सोना, पहले तो तुम्हारी लौटा नहीं तो उसको बहुत भरते रहो, मेरी बार बार की तपस्या सब बेकार कर दी, भूमि मिला दी है जो रसायन बनाया था सोना बनाया, और वो समझ रहे थे सब सुरचंद्रा से इसको तकलीफ होगी लेकिन तकलीफ का निवारण भी जानते थे कितना सोना चाहिए भरती थी, और उनकी ऐसी रिद्धि थी अपने पैर के करे अंगूठे के पास से भूल उठाए और सामने बहुत बड़ी चट्टान थी उसमें ऐसी फेंक दी पूरी चट्टान स्वर्ण में होगी उठा ले जाए कितना सोना चाहिए, और वो विस्फार के लिए उनसे देख करें, तात्पर्य ये है कि ये जीव अनंत हुआ ये बाह्य समृद्धता के अथवा विषयों की सुखावस में फंस करके उत्कृष्ट जैन धर्म और ये सब पाकर के खो के चला जाता, ये बात मैंने इसमें कही, अथवा पांच इंद्रियों के विषयों की गुलामी करते हैं। अभी जो किसने पूछा था कि अमृत क्या चीज है जिस तो जानते हैं, तो अमृत है कहाँ है देवगति में जाओ आपको अमृत करते हुए झलेगा, वैसे साइंटिफिकली इसका भी ये कहा जाता है जैसे शुगर कैन का जूस का गन्ने का जो रस होता है उससे गुड़ बना, गुड़ से खंड दही शर्करा, फिर कहाँ तक अपन जाते हैं खड़ी शक्कर बोलते हैं मिश्री, और मिश्री के बाद की स्टेज अमृत है ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था, और वो उनके कंठ में जल जाते हैं, जैसे इंद्र आता है तीर्थंकर भगवान के अंगूठे में वो कहते ना अमृत रेड़ देते अमृत की स्थापना कर देता है, और बाल तीर्थंकर उसको चुस्त रहते हैं और मस्त रहते हैं, ये एक बात है। और इसके बाद मेरे को जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में बात करता हूँ, ऊपर लिखा है प्राथमिक लेवल का प्रश्न है, जैसे लगता तो प्राथमिक लेवल का नहीं है, स्वाध्यायी जी मैंने लिखा है द्रव की एक समय में अवस्था ने पर्याय कहे थे द्रव में पर्याय नहीं तो स्पष्ट समझाए थे पर्याय में द्रव नहीं एम तकलीफ खाए जो द्रवनीय अवस्था एक समय में पण तो तेने तेज द्रवनी पर्याय केम कही सका। द्रव की एक समय में अवस्था ने पर्याय कहे, ये तो बराबर है ना, जिनका भी प्रश्न इसमें तो कोई डाउट नहीं। पहले एक समय लो प्रचार करता तेरा प्रारंभ की कर अपना ये सब प्रज्ञापन पर्याय के दो भेद बताए, द्रव की पर्याय गुण की पर्याय। द्रव की पर्याय को समान जाति द्रव पर्याय और असमान जाति द्रव पर्याय दो भेद, और गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं मालूम ही। तो अगर अपन समुचित द्रव की पर्याय लेते हैं तो उसको अपन व्यंजन पर्याय लेते हैं, और उसके बाहर सजीव शरीर आदि संबंध के देखते हैं तो वो असमान जाति द्रव पर्याय जीव चेतन अरूपी और रूपी कर्म शरीर आदि व्यवहार से संसार योगी को रूपी भी कहा जाता है। ये बातें हैं नहीं, आपने कहा एक समय की अवस्था में पर्याय कहे थे, तो समय की भी व्याख्या तो आपके ख्याल में होगी कि सबसे छोटी से छोटी इकाई, जैसे वर्तमान में सुपर कंप्यूटर एक सेकंड का एक अरबवां भाग नाप रहा है और उससे भी ज्यादा। आज इंद्रिय ज्ञान की ताकत थी तो केवल जानेगा तो उसकी इकाई क्या जाएगी, जिसका फर्दर डिविजन नहीं हो सकता। तो वो एक समय की अवस्था को पर्याय कहते हैं, बराबर है। द्रव में पर्याय नहीं तो इस पर समझाएं छे, ये मैं जरा पूछना चाहता हूँ, द्रव में पर्याय नहीं तो इस पर समझाएं छे, मतलब समझाना है या समझ में आता है?
समझ में आता है।
ओके, समझ में आता है। द्रव में पर्याय नहीं तो इस पर समझाएं छे, पर्याय में द्रव नहीं एमा तकलीफ खाए छे। अब ब्रह्म पर्याय नहीं तो इस पर समझाए थे, पर्याय में द्रव
नहीं
तकलीफ खाए थे, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। जो यदि आप प्रश्नसार पढ़ेंगे मैं तो एक दृष्टांत बोल दूं, तो मान लीजिए मुझे 10 ग्राम सोना खरीदना है, स्वर्ण खरीदना है, सर आपसे मिल गए और पहली दुकान से कहा भैया मुझे 10 ग्राम सोना चाहिए, तो वो क्या देगा हमारे लिए? सोना माने नहीं, दिल्ली देगा क्या, आभूषण देगा, पूछेगा ना, वो पूछेगा नहीं
क्या चाहिए
आपको, क्या चाहिए? खाली सोने की दिल्ली चाहिए, टुकड़ा चाहिए, क्या आभूषण चाहिए? मुझे अवस्था नहीं चाहिए, तो देगा नहीं देगा? और समझदार होगा कि ग्राहक कैसा है तो ये कहते अमीर दुकान तो घंटा लगा अवस्था का सोना, और पूरे सराफा घूम के वापस आए। अरे जगत में प्रगुण पर्याय भाई वस्तु इंद्रिय लक्षण वस्तु सम्मत करो, इससे दिख जाए पूरा पदार्थ विज्ञान गुरुदेवश्री के प्रवचन है 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 स्वरूप लक्षण है, ख्याल रहेगा, अवस्था के लिए वस्तु नहीं, वस्तु के ना होता है। आत्मा के बारे में प्रारंभ में कहा है गाथा 8 में प्रश्न का है कि पर्याय के बिना द्रव नहीं और द्रव के बिना पर्याय, प्रणवादी जगह द्रव तत्काल परिणाम प्रणाम, द्रव जिस समय जिस परिणाम से माने जिस अवस्था से प्रणमता है उस समय वो समय ही होता है। और उसकी विवेचना में उन्होंने आगे 9 आदि गाथा में कहा कि जीव जिस समय सो परिणाम से दया दान करुणा भाव आदि से प्रवर्त रहा है तब वो पुण्य आत्मा है, सुनना। और जब वो विषय कथा रूप प्रवर्त रहा है उसकी प्रणाम उसके उन्हें पार्टी के विषय में प्रवर्तन की तो उस समय वो पापात्मा है, परिणाम से उनको आत्मा को देगा। और जब दोनों से रहे मात्र भीतरा भाव शुद्ध के रूप शुद्ध बना के रूप प्रणव रहा है या तब बेहतर तब वो धर्म अच्छा ये तो उन्होंने अवैधन कर दिया। लेकिन बहुत सारे जीव इसमें भी गलत भरी रखते हैं, पुण्य का उदय पाप का उदय ये वास्तव में अघाती अपनियों का उदय है, इससे जीव के स्वरूप के घात का कोई संबंध नहीं। करोड़पति अरबपति रहो बिल्कुल गरीब कंगाल हो। इसके लिए उदाहरण आते हैं त्रिशंकर भगवान खासकर हम उदाहरण देते हैं शांति न कुम सुना करेगा तीनों त्रिशंकर चक्रवर्ती कामदेव इतना इतना विभूति हजारों दिन जिनकी सेवा उनको क्या तकलीफ थी आगे 15 एकड़ की, जिससे वो घर बार छोड़ करके जंगल में नगर निगम शिक्षा लेकर के उत्तराखंड से गए। तो इनकी करें जब चक्रवर्ती थे तब सुनी थे या आप जब मुनि मुद्रा में तब सुनी, ये तो हम उदाहरण के ज्ञान से बोलते हैं आगम नहीं कर निर्णय करो। अब क्या है हजारों के पास पहले जितना सेवक थी कहीं सुविधाएं थी सब थी, अब तो सब चीज कर कुछ नहीं रहा है ना। यही अगर वहां संदर्भ में बैठ जाए वहां संयोग सुख का कारण होता ही नहीं, वो तो जीव के मोल के अनुसार वो अनुकूल प्रतिकूल वो बनता बिगड़ता रहता है, बनता बिगड़ता है उसका तो ज्ञानहीन काम चलता है। ये जीव अपने ही खोटे विकल्प आदि प्रणाम करके सुखी दुखी होता है। तो ये तो ये बात हुई तो पर्यावरण ग्रह नीति कहना तकलीफ है, बिल्कुल तकलीफ नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्रह पर्याय की बना नहीं होता, पर्याय ग्रह की बना नहीं होती। चले नक्की करो कोई भी जगत में। अब दृष्टि के विषय की बात करते हैं तो कुछ लोग प्रचलित होते हैं वो मतलब है कि पर्याय है द्रव दृष्टि का विषय, तो द्रव को अलग बात है ना, तो तकलीफ बताओ आप कौन सी।
आज सुबह के लेक्चर में मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आया था द्रव्य में पर्याय नहीं है, पर्याय में द्रव्य नहीं है। आपने आज वाक्य
अच्छा बिल्कुल ठीक
वाक्य
में देखिए जो त्रिकाली द्रव है यानी अपन ने जो 5 भाव जीव में पड़े ना, 4 पर्याय रूप और 1 त्रिकाली रूप। मैंने सदा परसों रचना दिया था किसान का गेहूँ होता है, गेहूँ पर्याय में त्रुटि अंकुर होता है, अंकुर का नाश होता है और पौधा होता है फिर गेहूँ आ जाती है। इसका मतलब गेहूँ पना रूप कोई शक्ति सब अवस्थाओं में सतत रूप से विद्यमान है। ऐसी ये जीव निर्भर श्री के सिद्धार्थ तक पंच परावर्तन
नहीं है इसलिए
हाँ पता है सुनो, वो जो सरकारी शुद्ध जीवन स्वभाव वो कभी भी क्षणिक पर्याय नहीं आ सकता। अगर क्षणिक पर्याय रूप हो जाएगा तो क्षणिक पर्याय का देव होगी जनाप हो जाए वस्तु का उचित हो जाएगा। एक समर अधिकार में जैसे अपने अमरीश चंद्राचार्य ने 150 विकासा की टीका में ये बात लिखी है कि कारण सहित्रेण आदि स्वभाव का पूर्ण असत्यत्वा हजारों कारणों के मिलने पर भी स्वभाव का कभी अभाव नहीं होगा। तो फिर एक बात तो बंधन की कर ले जगत में जितने भी द्रव्य हैं पदार्थ वे अपने में स्वभाव से पूर्ण हैं, कोई आधे अधूरे नहीं है, उनको किसी भी पर्चे हस्तक्षेप या अपने प्रणाम के लिए किसी की जरूरत नहीं है, स्वाधीन है पूरे अपने आप स्वरूप से स्वभाव से बने। तो इस प्रकार से ये समझ लेना तो पर्याय द्रव नदी एवं तकलीफ माने वो त्रिकाली क्षणिकली हो जाता, क्षणिक त्रिकाली नहीं हो
जाता
इतना ही अर्थ देगा, इससे ज्यादा कुछ अर्थ नहीं। जो द्रवनी अवस्था एक समय में कण
तो न हो
तो पहले
कई न हो
एक समय में
पर्याय न हो
एक समय में
क्वेश्चन इज कि एक द्रव्य की जो पर्याय होती है वो पर्याय में अगर उस द्रव्य का जनक न हो तो और कोई भी द्रव्य का पर्याय हो सकती है। पर्याय कुछ पर्याय में द्रव्य तो कुछ स्वरूप में है
कुछ नहीं पूरी है
पूरा ये नानवे है
पूरी है पर्याय के बाहर द्रव्य नहीं है द्रव्य बाहर पर्याय नहीं है
द्रव्य वहाँ तक
तकलीफ नहीं। आप जब पूरा प्रमाण से वस्तु का बंधारण समझेंगे ना तो एक बात समझ जाएगी। एक से एक गाथा में प्रशंसा सिद्ध किया है 100 नंबर गाथा में कि ध्रुव के बिना उत्पाद व्यय नहीं, उत्पाद व्यय के बिना ध्रुव नहीं और उत्पाद व्यय और ध्रुव के बिना नहीं और व्यय उत्पाद और ध्रुव के बिना नहीं, ऐसा पूरा सिद्ध किया। वस्तु का बंधारण संरचना कंस्ट्रक्शन कंस्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस इस प्रकार से ये आप ले लेना तो इसलिए उसमें कोई कोई होगी। ये प्रयोजन की स्थिति के लिए कहते हैं द्रव्य में पर्याय नहीं पर्याय तो वो चाहे की तरकारी को सिद्ध ना आरंभी उद्योगी हिंसा में समझाइए क्या फर्क समझाइए देखो हिंसा ये जो है ना, पहले तो बात चली गई रागादी की उत्पत्ति ही निश्चय से हिंसा है, ठीक है ना, और रागादी की उत्पत्ति नहीं होना ही हिंसा। अब गृहस्थी जीव को ये अपने आजीविका आदि के लिए और गृह में रहता है तो उसको बहुत आरंभ प्रारंभ होते रहते और होना करना पड़ते नहीं चाहिए। तो उसमें चार प्रकार की हिंसा बताई, संकल्पी, विरोधी, आरंभिक और उपयोग। संकल्प हिंसा माने इंटेंशनल किलिंग, वो सामान्यतः किसी को जीव को नहीं होगी, माने जैन की बात नहीं करें और बाकी तो करते ही रहते हैं। दूसरा है विरोधी, तो न्याय की जो बाधित अपने जीव को चेतन हो अचेतन उसको प्राप्त करने के लिए शस्त्र भी उठाना पड़ते हैं, पंचेंद्रिय संगीत तक का घात हो जाता है तो अभी वो अवृत अवस्था तक होता है, ऐसा हो सकता है। ये विरोधी हिंसा, लेकिन अन्याय वाला नहीं पड़ता नहीं हटता, अपने वस्तु को अपने न्याय अर्जित वस्तु को प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी अधिकार सबके दर्शन करे पड़े। और आरंभिक और उपयोगी आपने पूछा, आरंभिक में आप घर में झाड़ू दुआरी लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, जरा भी प्रमाद होगा पानी छाना कपड़ा वैसे रख दिया अथवा विवेक नहीं रखा और कुछ शकर आदि गिर गए, जीव उत्पन्न हो गए, ये सारा विधान अभी यहाँ लोग भूल गए। शकरा निकरा बोलते ना कि आपने उसी आदित से यहाँ गिलास पकड़ लिया, ऐसी धर दिया या दूसरा उसमें टच कर लिया, तो ये जीव के उत्पत्ति के स्थान है और समुद्र जीव उत्पन्न होते रहते हैं, घास होता रहता है और दो इंद्र तीन इंद्र भी पैदा हो जाते। तो इसलिए आरंभिक हिंसा से भी यथाशक्ति बचना चाहिए, सर्वथा तो नहीं बच सकता, घर साफ सफाई करना, कोमल झाड़ू रखेगा और वो धीरे से करेगा जितना बनेगा। और उद्योग में अब आजीविका के लिए कोई ना कोई व्यापार धंधा करेगा, उद्योग भी चलाएगा, तो प्राय देने ऐसा उद्योग ग्रहण नहीं करते जिसमें हिंसा हो, और ये सब अवृत अवस्था में होते हैं। इसलिए अपना वृद्धि होने पर भी कुछ समय तक रहता है वो 11 प्रतिमाएं कहाँ तक रहेगा और फिर कैसे आरंभ किया गया, उस समय उसका विस्तार से वैदिक को सुनाया ही जाएगा। इस प्रकार से समय लीजिए आप।
हाँ,
ये जो शिविर चल रहा है चार अवयवों में वितरकता की प्राप्ति, इसमें हम लोग चारों अवयवों के संबंध में यहाँ पे चर्चा चल रही है, उसमें मेरा टॉपिक प्रथमा है उससे वितरकता की प्राप्ति है। और इसमें जो बिंदु लिए गए हैं मुख्य रूप से, जो आज जो बिंदु लिए गए थे, कल भी एक बिंदु लिया गया था प्रथमान योग से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि, दो मिनट में उसे लेता हूँ और आज का बिंदु लेता हूँ। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में ये कहा था कि घोषणा भूतकाल भविष्य काल की घोषणाएं प्रथमान योग में मिलती है और उसी के अनुसार सारी घटना चक्र होता है। और उसमें मैंने एक दृष्टांत दिया था कि जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है द्विपायन मुनि का निमित्त से द्वारिका चले, ये दृष्टांत दिया था। 12 वर्ष के बाद देवीनाथ भगवान ने घोषणा की थी 12 वर्ष बाद द्वारिका चलेगी, तो द्विपायन मुनि को 12 वर्ष तक द्वारिका में नहीं आऊंगा ये विकल्प तो आया। लेकिन देवीनाथ भगवान ने तो ये कहा था कि द्विपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका चलेगी, तो उन्हें ये विकल्प क्यों नहीं आया कि मैं वस्त्र पहनूं ना द्विपायन मुनि रहेगा ना द्वारिका चलेगी, ऐसा विकल्प क्यों आया? तो उसका कारण यह है कि सच में परिणाम जो होते हैं वो क्रमबद्ध के अनुसार होते हैं, जैसा क्रमबद्ध वस्तु का परिणाम होना होता है। इस बात को अनेक तर्क और युक्तियों के माध्यम से प्रथमान योग के आधार पर सिद्ध किया था। उसके बाद आज का जो विषय चला था, आज थोड़ा विषय चला था पुण्य पाप के संबंध में चला था, और उसमें हमने प्रथमान योग का एक दृष्टांत लिया था विभीषण का, रावण का। और विभीषण रावण का दृष्टांत लेते हुए ये कहा था कि पद्म पुराण के अंदर ये बात आई है कि रामचंद्र जी सीता जी का जब उन्होंने रावण ने हरण किया और विभीषण ने रावण और विभीषण दोनों सगे भाई थे, सहोदर भाई थे, तो रावण को उस विभीषण ने समझाया कि तुम एक राजा हो, तुम्हें ऐसा काम करते हुए शोभा नहीं देता। रावण को हमने रखा था पाप की जगह और विभीषण को हमने रखा था पुण्य की जगह, कि पुण्य को समझ लो विभीषण, पाप को समझ लो रावण, लेकिन दोनों का कुल एक है, ध्यान रखना दोनों राक्षस कुल के हैं, ये पक्का है। इसी तरह ये पुण्य और पाप ये आश्रव तत्व की वृत्तियां हैं, ये कर्म तत्व है, ये धर्म तत्व नहीं है, लेकिन वो पाप को पुण्य समझाता है तो पाप पुण्य को ठोकर मार के बाहर कर देता है, चल तू मेरे को समझाने आया है, ऐसा कहकर के वो रावण रावण का साथ छोड़ करके राम के साथ में आता है, तो राम के गुप्तचर उसे उन्हें मतलब बताते हैं कि भाई विभीषण अपनी तरफ आ रहा है। राम को सारा घटना चक्र अपने प्रज्ञा विशेष प्रज्ञावान पुरुष से पता हो गया कि क्या ये सब चक्कर हुआ है, तो रामचंद्र जी ने उनसे एक बात कही अपने गुप्तचरों से अपने सेवकों से कि वो यदि आता है उसे आने दो, वो यदि यहाँ रहता है उसे आप रहने दो, लेकिन उसके प्रति तुम सावधान रहना क्योंकि जल और कुल के मिलते देर नहीं लगती। तो ये बात कहकर के आचार्य रविशरण देव बहुत ही गजब का सिद्धांत कि पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, मतलब वो आता है ज्ञानी की भूमिका में, पुण्य परिणाम आता है ज्ञानी की भूमिका में, कुछ काल तक पुण्य परिणाम रहता भी है, वो पुण्य परिणाम तत्व विचार में, तत्व चिंतन में, तत्व इत्यादि में उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि विभीषण का पूरा उन्होंने उपयोग किया, विभीषण से रावण के सारे गुप्त अड्डों का उन्होंने पता लगाया, जो कुछ भी करना था, जो रावण के पराजय करने के लिए उसका जितना साथ लेना था उतना लिया, लेकिन तीर कमान हमें उन्होंने अपना ही काम में लिया, विभीषण का तीर कमान काम में नहीं लिया, माने पुण्य के परिणाम में तब तो निर्णय का अवसर मिलेगा, तब तो सुनने का अवसर मिलेगा, तब तो विचार करने का अवसर मिलेगा, ये पुण्य परिणाम है, लेकिन ध्यान देना कि तत्व का अनुभव कभी भी पुण्य परिणाम चले होगा उसमें अपनी ही प्रज्ञा काम में आएगी, एक ये बात सिद्ध की थी। और उसके बाद जब रामचंद्र जी वापस अयोध्या जाने लगे, मैंने अपने घर जाने लगे, तब उन्होंने उस विभीषण का आभार माना, आपने हमारी बहुत सेवा की, आपने हमारे को बहुत सहयोग दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, अब आप लंका का राज्य निष्कंटक होकर के कीजिए। इसी तरह जब ज्ञानी धर्मात्मा अपने स्वरूप में जाते हैं तो पुण्य का इतना आभार मानते हैं कि भाई ठीक है, आप हे ज्ञानाचार, हे दर्शनाचार, हे चरित्राचार, हे तपाचार, ये मैंने प्रवचन सारगी उस गाथा का रेफरेंस दिया था कि उसका इतना ही आधार कि तेरे प्रसाद से, तेरे प्रसाद से मैंने इस भूमिका पर वो राग रहा, और उस राग का भी अब जब वो अपने घर में गए, कभी उस विभीषण को जैसे साथ लेकर के नहीं गए, अयोध्या नगर का राजा नहीं बनाया, उसको राजा राज्य तिलक कहां का किया कि लंका का, कि इसी तरह पुण्य को धर्म का धर्माधिकारी या धर्म का राज्य तिलक नहीं किया जाता है, उसको तो वास्तव में कर्म का ही राज्य तिलक किया जाता है। हालांकि अभी कल के प्रकरण में भी एक प्रकरण में लेने वाला हूँ पुण्य अपराध, ये प्रकरण कल के प्रथमान योग के प्रकरण में लूंगा, तो और भी इसमें स्पष्टीकरण होगा। दूसरा एक प्रकरण आज शाम के उसमें लिया था सीता जी का एक दृष्टांत लेकर के, कि सीता जी के ऊपर अनेक प्रकार की विपत्तियां आई और तीन बार वो जंगल में गई, एक बार रामचंद्र जी के साथ गई तो उसने अपने पति धर्म का निर्वाह किया, दूसरी बार रामचंद्र जी ने घर से निकाला, और तीसरी बार उन्होंने कहा अब हम अपने ही घर में जाने वाले हैं, अपने घर जाने के लिए जंगल में चली गई आगे का भटका। तो जब दूसरी बार उन्होंने रामचंद्र जी ने उनको घर से निकाला लोकापवाद के कारण, तीर्थ यात्रा के बहाने, तब रामचंद्र जी को उन्होंने एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया, और वो संदेश ये दिया कि जिस तरह तुमने लोकापवाद के कारण मेरा त्याग किया उसमें तुम्हारा कोई ज्यादा अहित होने वाला नहीं है, लेकिन इस वीतरागी जिन मार्ग की निंदा करने वाले लोग हो गए, और उस संबंध में मैंने गुरुदेव श्री के द्वारा जो इस काल में अनेक आध्यात्मिक सिद्धांतों की ओर गुरुदेव श्री ने हमारे को स्पष्टीकरण दिया, हमको समझाया,
और उस समय जब उन सारे सिद्धांतों का विरोध होता था कि सोनगढ़ की गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती है, इनका तो क्रमबद्ध में जो होना है तो हो जाता है, तो हाथ पे हाथ करके बैठ जाएंगे अपने आप ही सब काम, ये सारी बातें, तो क्या इस तरह इस वीतरागी मार्ग की निंदा करने वाले लोग बहुत होंगे। तुम इस वीतराग लोगों की निंदा सुनकर के यदि इस वीतराग मार्ग की भक्ति छोड़ दी, इसके प्रति अभक्ति का परिणाम आ गया, तो अनंत संसार में भटकने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। इसमें सिद्धांत ये निकालना था कि देखो कैसी स्वयं के साथ में कैसी प्रतिकूल परिस्थिति है कि जंगल में है, लेकिन उन्होंने उस समय भी वो यानी धर्मात्मा सीता जी ने धर्म को साथ नहीं छोड़ा, एक ये उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। और उसके बाद वो अग्नि परीक्षा का उदाहरण दिया था कि सील की परीक्षा हुई उनकी, जब वो लव कुश का युद्ध हो गया वो सारी बात आई थी, तभी वो अग्निकुंड रचा गया, तो अग्निकुंड रचा गया तो सीता जी के मन पुण्य के प्रभाव से जो कि समझ लीजिए वो अग्निकुंड जल कुंड बन गया। तभी एक प्रश्न हुआ कि ये क्यों हुआ कि सीता जी के सील के प्रभाव से, तभी एक तर्क उसने दिया था कि बहुत से ऐसे हमारे वीतरागी संत हुए जिन्हें अग्नि में डाल दिया गया, जिन्हें घानी में फेर दिया गया, जिन्हें आग लगा दी गई, दसु कुमार आदि के सिर पर सिगड़ियां जलाई गई, क्या उन मुनिराजों का सील सीता जी के सिर से कमजोर था। तब गुरुदेव श्री के प्रवचन का एक आधार देकर के भक्तामन रहस्य नाम की एक पुस्तक है ब्रह्मचारी हरिभाई के द्वारा प्रकाशित, वो प्रवचन है भक्तामन स्तोत्र के गुजराती और उसका हिंदी अनुवाद हम लोगों ने प्रकाशित किया है भक्तामन रहस्य के नाम से। उसमें गुरुदेव ने एक स्पष्टीकरण किया कि सीता जी ने कि हे अग्नि, यदि मैंने मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से किसी पर पुरुष को चाहा हो तो मेरे शरीर को जला के भस्म कर देना, और यदि नहीं चाहा हो तो शरीर को जलाना नहीं है तो जिन शासन की सील धर्म की अप्रभावना होगी, ऐसा प्रणाम करके उन्होंने अपने पुण्य की उदीर्णा की थी और मुनिराज ने ऐसी उदीर्णा नहीं की थी। इस तरह के बहुत सारे सिद्धांत इस चर्चा में हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं, आगे भी अभी बहुत सारे एक दो तीन चीजें और आने वाली है, पुण्य अपराध कैसे है वो चर्चा आएगी, और अनुमोदना खोटी अनुमोदना का क्या फल होता है खास तौर से धर्म मार्ग में, वो प्रमाण योग के उदाहरण से कल की चर्चा में वो चीजें अपन सिद्ध करेंगे। गुरुदेव श्री के जीवन के कुछ प्रसंग प्रमाण योग के साथ ही लेकर के भी इस प्रसंग को सिद्ध अपन देंगे, ये चर्चा इसमें है। अभी ये आज की चर्चा से कुछ प्रश्न है, वैसे तो लगभग बहुत सारे प्रश्नों का समाधान अपने आप हो गया है, फिर भी जो प्रश्न आए देखते हैं।
जो राइटिंग है समझ नहीं आती है, मुझे चक्कर है पढ़ने पढ़ने
क्रमबद्ध पर्याय नियति है कि नहीं,
क्रमबद्ध पर्याय नियति है कि नहीं, कि देखो क्रमबद्ध पर्याय में कल एक बात कल भी स्पष्ट की थी आज स्पष्ट की थी कि क्रमबद्ध पर्याय में हमें अकेला काल का नियत बना क्यों दिखाई देता है, जबकि एक सारी बात आई थी कि क्रमबद्ध पर्याय में जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस विधान से जिस विधि पूर्वक लाभ अलाभ सुख दुख सब चीजें आती है ना, तो अकेली काल की निश्चितता में क्यों दिखाई देती है और चीजें क्यों नहीं दिखाई देती। और नियति का मतलब देखो जो गोमट सार का नियतिवाद है उससे क्रमबद्ध पर्याय का नियतपना बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। वहां पर अकेले काल लब्धि को माना गया है और क्रमबद्ध पर्याय में पांचों समवाय की समग्रता को स्वीकार किया गया है, उसमें पुरुषार्थ भी है, उसमें काल लब्धि भी है, उसमें भवितव्यता भी है, उसमें स्वभाव भी है और उसमें निमित्त भी है, इसलिए ये क्रमबद्ध पर्याय तो इनकी समग्रता का नाम क्रमबद्ध पर्याय है, अकेले काल की नियतता का नाम क्रमबद्ध पर्याय नहीं, ये बात चर्चा में स्पष्ट हो गई थी।
परिणाम परिणति भाव उपयोग इनकी व्याख्या
हो गया। अब इसके बाद ये कुछ राइटिंग
पढ़ने वाले बहुत कुछ सुनते पढ़ते हैं, यथा संभव श्रद्धा भी रखते हैं, फिर भी जीवन में शांति सुख समता आदि गुण प्रकट क्यों नहीं होते, कारण के साथ निराकरण भी बताने का अनुरोध है।
बहुत अच्छी बात है, आप सुनते हैं समझते हैं तो उसका जब सुनते और समझते हैं, जिनवाणी ये कहती है कि सच्ची रुचि लगन महेश्वरी के शब्दों में कहें तो उसके पीछे लग जाना चाहिए, सुनते समझते हैं
और यदि सुन समझ करके यहीं तक संतुष्ट हो गए कि हम तो समझ गए तो हमारी गाड़ी रुक जाएगी। सुनते समझते हैं तो सुनने और समझने का काम होता है, आगे का काम क्यों नहीं होता। हम सुनते हैं, नहीं सुनते उनसे तो अच्छे हैं, लेकिन सुन करके यही संतुष्ट हो गए। अपन तो सुनते थे ना, अपने को अब समझ में आ गया है। वास्तव में देखो, सुनने और समझने का फल उसका निर्णय आना चाहिए, परिणाम में आना। कब आएगा वो कि सुन और समझ हमने लिया तो हम निर्णय करेंगे ये बात जो हमने सुनी है, हमने समझी है, ये बात यथार्थ पर ऐसी है या नहीं। हुआ तो ये इसके लिए कोई दूसरा कोई कारण दूसरा कोई बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिनवाड़ी ये कहती है कि तुझे ही तेरा गुरु बनना पड़ेगा, दूसरा कोई तेरा गुरु बन करके तेरे को समझा देगा, तेरा कल्याण करा देगा, ये तीन काल में संभव नहीं है। हम सुनते हैं समझते हैं, तो सुनना और समझना माने खाली अपने को बात धारणा ज्ञान में आ गई, हमने वो धारणा ज्ञान पर आकर के हम संतुष्ट हो गए तो इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। बारंबार उसका विचार, बारंबार उसका गोलन मनन चिंतन खटक, जिसको बोलते वैंद्र की भाषा में बोलेंगे तो कहते खटक रहनी चाहिए। प्राप्ति नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, कहां मेरी कमी है। तो बार बार पटी टोटल 207 पेज में पढ़ लीजिए मौसम आप बता सकते हैं सम्मित, बारंबार उसका विचार करे, उसी का चिंतन करे, उसी का मनन करे, उसी के संबंध में प्रश्नोत्तर करे। सर एकमात्र आत्मा में जीवन हो जाए और आत्मा प्राप्त नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। एक बोल है 22 नंबर का बोल है, चैतन्य की चैतन्य में से परिणमित हुई भावना, राग द्वेष में से नहीं परिणमित हुई भावना, ऐसी यथार्थ भावना हो तो वो भावना फलती है, नहीं फले तो कहते छोटा ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। इसलिए आप निश्चित रहें, अनंत ज्ञानियों की गारंटी है कि अगर हम सही मार्ग में मार्ग की प्राप्ति के उद्देश्य से अगर हम चल रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें मोक्ष की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति होगी, होगी और होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। बाकी अपनी कहां अटक है, खाली सुन लिया सुन करके चले गए, समझ लिया हमने तो जान लिया भैया, हाँ ठीक है शास्त्र में लिखा है ना, सब समझ लिया, क्या समझना है बोलो, तो बस फिर हो गया काम, अटक जाएंगे जहां अटके वहां भटके, सीधी सी बात है।
रावण ने जो अपराध किया वह कारण से उन्हें तीसरे नरक में जाना पड़ा, ऐसा क्या अपराध कर्म बंधन हुआ था, रावण भावी तीर्थंकर का आत्मा है या कैसे फलित होता है।
तो भावी तीर्थंकर का आत्मा है इसका मतलब पहले कुछ भी गड़बड़ करे तो चलेगा क्या। भावी तीर्थंकर के आत्मा तो वहां भी भगवान भी थे भाई साहब, वो तो उनकी घोषणा आदिनाथ भगवान ने की थी ना, 2400 तीर्थंकर होंगे, उसके बाद कितनी बार निगोद गए हैं, इससे इस बात का पता चलना चाहिए अपने को कि जैन दर्शन में किसी के लिए लिहाज नाम की कोई चीज नहीं है। अरे तुम तो तीर्थंकर के आत्मा की बात कर रहे हो, तीर्थंकर के जीव को भी जो उसी भव से तीर्थंकर होने वाले हैं उनको भी उस प्रकार के उदय आए हैं तो उनको भी वो उदय भोगने पड़ेगा। और आपने कहा कि रावण ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, तो सुबह दिन में बताया था ना, सुबह बताया था कि रावण ने ये अपराध किया कि एक सीता को अपनी भाव के अनुसार परिणमन कराने का प्रयास किया परिणमन नहीं करा सका, एक सीता जी को अपने अभिप्राय के अनुसार परिणमन कराने का प्रयास किया। मैंने ये भी दृष्टांत दिया था कि भगवान ने उन्हें बहुत सलाह दी, क्यों अपने हिंदुस्तान में सलाह देने वाले बहुत हैं, बिना मांगे भी सलाह देंगे, उनको सलाह दी अरे तुम तो बहुत पावरफुल हो, तुम तो बहुत ये हो, तुम बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करो, और बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके राम का रूप बना करके सीता के सामने जाओ, वो तुम्हें अवश्य पसंद करेगी। तो रावण ने कहा कि भाई साहब तुम मुझे अब सलाह दे रहे हो, ये काम मैं बहुत पहले कर चुका हूं। और हुआ क्या कि जैसे ही मैं राम का रूप बना करके सीता जी के सामने जाता हूं तो पर नारी मुझे माता के समान दिखाई देती, ऐसे भाव ही नहीं होते। तो सच्चाई यह है कि उन्होंने सीता जी को अपनी भावना के अनुसार परिणमन कराने की जो अभिप्राय किया था, विकल्प किया था, उस विकल्प का फल उनको तीसरे नरक में जाना पड़ा। मैंने तो ये भी कहा था कि देखो आज तक इतिहास में दूसरा कोई रावण नहीं हुआ, बोला था याद आया सबको, कोई माँ बाप के पुत्र जन्म हो और उसका नाम रास्ते निकले, ज्योतिषी बताया कि रास्ते नाम रखो इसका, तो आज तक बताओ किस दिन माँ बाप ने अपने बेटे का नाम रावण रखा उसके बाद। ये भी कहा था कि भाई जब एक सीता को अपने अभिप्राय के अनुसार परिणमन कराने का विकल्प अभिप्राय वो तीसरे नरक का कारण बना तो हमारा क्या होगा? हम तो जगत के अनंत पर पदार्थों रूपी सीता को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने का प्रयास करते हैं, हमारा क्या होगा? इन भावों का क्या फल होगा? कोई भी काम करो उसके पहले इस बात का विचार कर लो कि इन भावों का क्या फल होगा। ये है बात, बाकी चर्चा तो बोल रहे।
इसमें एक सेकंड कहना चाहता हूँ, अभी तो जो अपना अवसर अपने काल चल रखा है सारे चौबीस तीर्थंकर स्वर्ग आदि से आए और उस सर्वे में जितने सब आने वाले हैं
अधिकतर, हाँ
अधिकतर आपको विदित हो तो नरकों से निकल के आने वाले हैं। हाँ एक चीज, दूसरी चीज कि पहले नरक में दूसरे तीसरे नरकों में असंख्यात नार की जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधे पड़े हैं, असंख्यात कह रहा हूँ एक एक में, ऐसी स्वर्गों में
सब अपना अपना नंबर ही नहीं है तो अपन तो बिना
ये भी बहुत बड़ा है एक लोगों को रोग लग गया तो ये सिंपल साधारण सामान्य क्यों नहीं होगी मुक्त जाना अच्छा नहीं लगता, तीर्थंकर रोगी मुक्त जाना अच्छा लगता है
देखो। ये तो एक बात और आपको पता होगा
कि पूज्य गुरुदेव श्री ने सुखानी जी के बारे में बहुत मार्मिक बात कही थी, याद है सबको क्या कही थी? देखो वास्तव में क्या ज्ञानी की करुणा, क्या गुरु का शिष्य के प्रति, सुखानी जी को सब में दर्शन हुआ है ना, और सुखानी जी के लिए गुरुदेव श्री ने क्या बोला, जब हम आगामी भवों में जब हम तीर्थंकर बन के पूरी दीक्षा अंगीकार करेंगे और नमन शिष्य में कहेंगे हमारा नमस्कार सुखानी को पहुंचेगा तो अपन तो क्यों तीर्थंकर के चक्कर में पड़े, हम तो सीधे पहुंच जाएंगे क्या था?
कुछ लोग सोचते हैं हम तो गुरुदेव श्री के साथ ही हो जाएंगे, उनके योजना निर्णय गलत है, उसके पहले प्रसाद करो अपना, अरे प्रसाद तो ही कहा जाएगा, ये कोई नहीं होता कौन कब क्या जाएगा, तो सिविल ज्ञान की नॉन में कौन कब जाएगा, चलिए अब क्या विषय लगा हुआ
जाने को।